मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 30 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये इन मित्र का नाम है जसविंदर कौर। ये 13 ML गाँव से हैं, गंगानगर राजस्थान से। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, एक छोटी सी सूचना है और ये जो सूचना है वो ऑनलाइन क्लासेस के हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। दोस्तों, आप सबके मेल पर यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस के पेड स्टूडेंट्स हैं उनके मेल पर जो आपका कोर्स है, जो आपके लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड एक पहला ऑडियो भेजा गया है, आपके मेल पर भेजा गया है। ये ऑडियो आपके मेल पर भेजा गया है, आप सब उसे एक्सेस कर ले। और यदि बाय द वे आपको इस मेल को ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसे प्रमोशन की कैटेगरी में जाकर के देखिए, वहां यह ऑडियो आपको मिल जाएगा। यहां मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स से बताना चाहूंगा कि जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के पेड स्टूडेंट नहीं है वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि इसकी वजह से उनको कोई अपना नुकसान हो रहा है, नॉट एट ऑल। वो जो ऑडियो है, चूंकि वो लेक्चर्स सुन रहे हैं और उन लेक्चर्स के सुनने से संबंधित है, इसीलिए आप इसमें कहीं किसी तरह का कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, राइट? फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बेहतर होती जा रही है इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो अखबारों में आज बहुत ही प्रोमिनेंटली छपी भी है, न्यूज में भी रही है, वो ये है कि भारत सरकार ने चाइना के जो 59 ऐप्स हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है, और इसमें टिकटॉक ऐप से आप सब बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, जिसने यूं कह लीजिए कि एक प्रकार से तहलका मचा रखा है हिंदुस्तान में। इसके बहुत सारे यूज करने वाले लोग हैं टिकटॉक। तो कुल 59 जो ऐप हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। आप देख रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जब ऐसी स्थिति आती है तो देखिए स्थितियां ऐसी होती चली जाती हैं। हमारे देश में भी मतलब चाइना के सामान का बायकॉट की शुरुआत हो गई है, आयात निर्यात पर भी बातचीत चल रही है, सीमा पर तनाव बना हुआ है, उस पर लगातार बातचीत जारी है। तो अब देखते हैं स्थिति क्या होती है। यहां जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां जाननी चाहिए वह यह है दोस्तों कि हमारे यहाँ एक IT एक्ट है बकायदे, वो IT एक्ट आपकी जानकारी में होना चाहिए। IT एक्ट, जिसे आप कहेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, पूरा नाम है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये 2000 में बना था और बाद में इसमें 2008 में संशोधन किया गया। आज के अखबारों में आपको ये पढ़ने को मिला होगा कि ये जो प्रतिबंधित किए गए हैं ये ऐप, वो बकायदे ये जो एक्ट है उसकी जो धारा 66A है उसके तहत किए गए हैं। 66A अक्सर आपको ये धारा पढ़ने को मिलेगी, 66, फिर उसके ABCDE वगैरह आप पढ़ते हैं। तो इसे ए के अंतर्गत, 66 के ए के अंतर्गत बैन किया गया है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये धारा 66 बेसिकली है क्या? 66 जो है उसका संबंध है कंप्यूटर प्रणाली की हैकिंग से, हैकिंग ऑफ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को हैक करते हैं, 66 का इसी से संबंधित है। और 66 का जो ए है, अब आप देखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं सामान्य तौर पर जो जनरल स्टडीज के लिए आपके काम आने वाली बात हो सकती है केवल वो बता रहा हूं। कंप्यूटर या अन्य किसी भी तकनीक के माध्यम से दुर्भावना से प्रेरित, गलत, परेशान करने वाला, धमकी भरा, घृणात्मक तथा प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला संदेश भेजता है तो वह दंड का भागीदार होगा। अब आप देखिए दुर्भावना से प्रेरित, ये एक शब्द है जिसे आप व्याख्या करके बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी भावना अच्छी नहीं है। अब आप जब सरकार ने अभी जो प्रतिबंध लगाया है, जब आप अखबार पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, ठीक है, देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए। ये शब्द अभी मैंने यहां इस्तेमाल नहीं किए हैं धारा के तहत। तो देखिए, जो दुर्भावना है उस दुर्भावना के तहत ये बातें आ जाती हैं कि आप देश के प्रति अच्छी भावना नहीं रख रहे हैं, आप देश में कुछ अफवाह फैलाना चाहते हैं जिससे कि उसकी एकता भंग हो, उसकी अखंडता को चोट पहुंचे, उसकी सार्वभौमिकता पर प्रश्न चिन्ह लगे। जब इस तरह की भावना से प्रेरित होकर के आप कुछ भी काम करेंगे तो वो दुर्भावना से प्रेरित हो जाएगा ही माना जाएगा। तो 66A के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसके तहत BCDE और भी हैं, और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जरूर इस एक्ट को अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से तैयार कर लें। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही जुड़ी हुई जो दूसरी धारा है वो है 67, जो ठीक इसके बाद आती है। इसका संबंध अश्लील सामग्री के प्रकाशन से है। पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन मैटर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ये सेक्शन 67 के अंतर्गत आता है। ये दो धाराएं मुझे लगता है कि साइबर क्राइम जो आपका एक आप यूं कह लीजिए कि एक चैप्टर है नेशनल सिक्योरिटी के तहत, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण या मायने अर्थ रखने वाला यह लेसन है। दोस्तों, न्यूज में ही आपने एक और घटना सुनी और वो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल। लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंटल काउंसिल, जिसे आप हिंदी में कहेंगे लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद। आपको मालूम है कि पहले जो लद्दाख था वो तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, फिर बाद में पिछले साल सरकार ने दोनों को अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। लद्दाख इंडिपेंडेंट केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, विथ वहां की जो विधानसभा है वो अभी रखी गई है, मतलब विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, अभी की बात नहीं है, ये जो परिषद जो बना है ये पहले से ही बना हुआ है। शायद आपने एक नाम सुना होगा, दार्जिलिंग हिल डेवलपमेंट काउंसिल। दार्जिलिंग में इस तरह का परिषद बना हुआ है, बहुत पहले वहां आंदोलन हुआ था गोरखालैंड की मांग को लेकर के, फिर वहां इस तरह का परिषद बना दिया गया था। बेसिकली ये जो परिषद होते हैं वहां आप यूं कह लीजिए कि एक निर्वाचित, एक विधानसभा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक निर्वाचित काउंसिल है, परिषद है, तो वहां के लोग निर्वाचित होते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो काम करते हैं। तो खासकर वहां की जो अपनी भाषा है, जो संस्कृति है, जो क्षेत्र का विकास है, उस पर उनके स्वयं का नियंत्रण हो, इस दृष्टि से इसकी इस तरह के काउंसिल का गठन किया जाता है। तो बाकायदे लद्दाख में भी पहले ये गठन किया जा चुका है। और अभी जो न्यूज में बात थी वो ये थी कि हमारे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका जो बजट था उस बजट में 4 times वृद्धि की गई है, 4 times वृद्धि की गई है उसके बजट में। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि वहां की जो भाषा और संस्कृति है उसके संरक्षण को प्रायोरिटीज देने के लिए ये जो एक्ट है, जो काउंसिल संबंधी एक्ट है, उसमें भी संशोधन किया जाएगा। चूंकि देखिए अभी लद्दाख नया ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो खासकर वहां के डेवलपमेंट से संबंधित अगर कोई इस तरह की खबरें आती हैं तो आपके ध्यान में रहना चाहिए। और खासकर अभी आप देख रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में कैसे तनाव बना हुआ है भारत और चीन के बीच में, तो इसीलिए लद्दाख से संबंधित अगर कोई भी इस तरह की घटना आती है तो उसे थोड़ा सा आप ध्यान से सुने। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है जम्मू कश्मीर में स्थिति बेहतर। कल के दूरदर्शन न्यूज में इस पर अच्छी खासी बहस कराई गई, डिस्कशन कराया गया। दोस्तों, अखबारों में आज आपने पढ़ा होगा कि जो डोडा जिला है उसे आतंक मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। डोडा आतंक से मुक्त, आतंकवादी घटनाओं के दंश को आप कह लीजिए, बहुत लंबे समय से यह जिला भुगतता रहा है, अब इसे आतंक मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। तो खासकर ये कैसे हुआ, इस संदर्भ में बहुत अच्छा डिस्कशन दूरदर्शन पर कराया गया था और मुझे यकीन है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली उस डिस्कशन को सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो अच्छा होगा कि आप उसे एक बार सुन ले। उसमें बहुत विस्तार से बातें बताई गई हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट उसमें आए हुए थे। उस डिस्कशन में जो 4-5 points जो निकल करके आए हैं कि स्थिति बेहतर क्यों हुई, सच पूछे तो डिस्कशन का केंद्र भी यही था कि स्थिति बेहतर क्यों हुई, कैसे हुई, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसे मान सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं जो उस डिस्कशन में उभर कर आए हैं। पहला तो देखिए कि सरकार ने जैसे उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया तो पूरे के पूरे उस क्षेत्र पर सीधे सीधे केंद्र का अधिकार हो गया। अब राज्य सरकारें नहीं, उस तरह से नहीं रही। राज्य सरकारें देखिए, जब कोई भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो आधारित होता है चुनाव पर, मतदान पर। और जब मतदान की बात आती या मत की बात आती है तो डेफिनेटली सत्ता को पता नहीं किस तरीके के कौन कौन से समझौते करने पड़ते हैं, वो पता नहीं लगता है, मालूम नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यहां कुछ शक्ति की जरूरत है मान लीजिए, तो जो राज्य सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं समझौता परस्त हो जाती हैं, केंद्र को इसकी जरूरत नहीं होती है। तो खासकर जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, पूरी जो वहां की बागडोर थी वो केंद्र के हाथ में आ गई। और फिर केंद्र ने जो सबसे बड़ा काम किया वो है पॉलिटिकल विल। इस शब्द को आप बहुत सुनते होंगे, पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति, केवल इच्छा ही नहीं इच्छा शक्ति। तो केंद्र सरकार ने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और उसके लिए जो जो भी उपाय किए जाने थे वो सारे उपाय उसने किए, जिसके परिणाम अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या उपाय किए? तो एक तो यह कि वहां हमारा जो सुरक्षा बल है उनको अधिकार दे दिए गए। पहले देखिए कि पत्थर फेंके जा रहे हैं उन पर, लेकिन वो हथियार नहीं चला सकते, कुछ ये नहीं कर सकते, तो उनको कुछ अधिकार दिए गए कि आपके ये अधिकार हैं, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही साथ वहां जितने भी आतंकवादी संगठन थे इनकी बहुत ज्यादा फंडिंग होती थी, फंडिंग, और ये जो आतंकवादियों को मिलने वाली जो फंडिंग है ये आपके नेशनल सिक्योरिटी वाले में चैप्टर के रूप में है, इनकी फंडिंग बहुत होती थी। तो केंद्र सरकार ने इस चैन को तोड़ने की कोशिश की ताकि इनकी फंडिंग रुक जाए। तो सच बात यह है कि आतंकवादियों की फंडिंग भी काफी कुछ रुक गई। जब फंडिंग रुक गई तो अब ये कैसे अपना काम चलाएं? इनका अपना काम जो होना है उसके लिए पैसा चाहिए, जो इनके संगठन में शामिल लोग हैं उनको पैसा दिया जाना है, हथियार चाहिए, दुनिया भर की दूसरी चीजें चाहिए। तो इससे इनकी जो आर्थिक कमर है वो टूट गई। और देखिए, जो अभी गिलानी जी ने जो हुर्रियत से अभी इस्तीफा दिया है कल, उसके पीछे भी यही माना जा रहा है कि अब उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं वहां जो आतंकवादी संगठन है उनका मनोबल टूट रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं, अब यहां ज्यादा दिन तक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। यह भी एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए प्रमाण माना जा रहा है, साक्ष्य माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ वैसे दोस्तों की वहां के जो युवा थे उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। आप देखेंगे कि उस समय बहुत से लोगों को पुलिस में भर्ती किया गया, बहुत से लोगों को और दूसरे जो हमारे फोर्सेस हैं उनमें भर्ती किया गया, और युवा बहुत उत्साह के साथ उसके लिए आगे आए भी। इससे पहले आतंकवादी संगठनों को युवाओं का बहुत सपोर्ट मिल रहा था, तो वो सपोर्ट मिलना एक तरीके से बंद हो गया। और इन सब का मिला जुला नतीजा यह हुआ कि धीरे 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 जो आतंकवादी जो गतिविधियां थी राज्य में वो यूं कह लीजिए कि धीमी पड़ने लगी, सुस्त होने लगी। देखिए अभी भी आप देखिए सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जारी रहते हैं। अखबारों में आप पढ़ते हैं कि वहां दो आतंकवादी मारे गए, हमारे सुरक्षा जो कर्मी हैं वह भी शहीद होते हैं, लेकिन पहले की तुलना में स्थिति काफी नियंत्रण में है। चूंकि ये सारी स्थिति कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, इसलिए मुझे लगा कि इसे मुख्य विषय के रूप में आपके सामने रखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं, राजीव यादव मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से और अर्जुन कुमार औरंगाबाद बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।